आत्मा कि भगवान सबके भीतर भी हैं और वो सबके बाहर भी हैं। भीतर तो है जैसे हमने बताया वो परमात्मा के रूप में है, और बाहर वो अपने धाम में भी नहीं, पर ये जो परमात्मा का रूप है भगवान का, ये हर अणु में है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि भगवान हर अणु में रहते हैं और दो अणु के बीच में जगह है उसमें भी रहते हैं। अनयोर अनियान महतो महियान, उपनिषद में बताया गया है कि भगवान छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। अणु के अंदर भी भगवान है, इतने इससे ज्यादा कोई छोटा हो सकता है? ये भौतिक ब्रह्मांड में अणु जो है वो सबसे छोटी चीज है, अणु से छोटा कोई चीज नहीं है, पर अणु से भी छोटे हैं भगवान। पर भगवत गीता में भगवान बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। वो कहते हैं कि सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं, भौतिक ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक जगत है, सब कुछ मुझसे ही आता है। वेदांत सूत्र में भगवान का वर्णन किया गया है जन्मादि अस्य यतः, यानी भगवान वो है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ भगवान के अंदर ही है। भगवान ही एकमात्र सत्य है। भगवान से अलग जब हम किसी को देखते हैं तो वो माया है। भगवान के अंदर सब कुछ चलता है। जो भी हम सत्य देखते हैं वो सत्य इसलिए होता है कि हम उसे भगवान से जोड़ कर देखते हैं। भगवान से जब उसका नाता हम काट देते हैं तो वो मिथ्या हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान बताते हैं कि ये सृष्टि के पहले मैं अकेला ही था, ये सृष्टि के दौरान मैं अकेला ही हूं, और ये सृष्टि जब नाश हो जाएगा उसके बाद मैं अकेला ही रहूंगा। तो सत्य क्या है? सत्य सिर्फ भगवान है और हम उनके अंश हैं, उनके शक्ति हैं, हम उनके तटस्थ शक्ति हैं। ये भौतिक ब्रह्मांड उनका बाहरंग शक्ति है, उनका धाम उनकी अंतरंग शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान ये दोनों हमेशा रहते हैं, पर हमें ये जानना चाहिए कि हमेशा शक्ति शक्तिमान पे निर्भर होता है। अगर शक्तिमान नहीं होगा तो शक्ति कहां से आएगी? इसीलिए ये भगवान अपने सारे सारे जो ब्रह्मांड है, सारे शक्तियों के स्रोत हैं, इसलिए वो सबसे बड़े भी हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब महाविष्णु कारणोदकशायी सागर में लेट जाते हैं, शैया में अपने विश्राम करते हैं, तो उनके हर सांस से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। सांस के बाहर निकलते ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो सांस अंदर ले लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड फिर से उनके सांस में, उनके शरीर में वापस चले जाते हैं। तो देखिए उनका शरीर कितना बड़ा होगा। एक ब्रह्मांड की सीमा हम नहीं जान सकते, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर के हर रोम रोम से निकल रहे हैं। उनके एक रोम के बराबर हमारे एक ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो उनका शरीर कितना बड़ा होगा। और ये जो महाविष्णु हैं, वो आध्यात्मिक जगत के आकाश के सिर्फ एक कोने में रहते हैं, तो फिर आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा होगा? तो भगवान की महिमा क्या है हम नहीं समझ सकते। तो भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। तो भगवान में सारे विरोधाभास जो हैं उनका समाधान हो जाता है। सिर्फ भगवान ही ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कभी नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि और एक विरोधाभास भगवान में है। थोड़े लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है, थोड़े लोग समझते हैं कि नहीं नहीं भगवान सिर्फ साकार है, थोड़े लोग कहते निराकार है। पर अगर भगवान पूर्ण है तो उन्हें दोनों निराकार और साकार होना चाहिए। सिर्फ अगर निराकार है तो कैसे भगवान हो सकते हैं? सिर्फ अगर साकार है तो कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान की पूर्णता का मतलब है कि उनके अंदर सारे गुण हैं, जो हमारे अनुभव में है और जो हमारे अनुभव के बाहर है। हम यहां देखते हैं कि हमारा आकार है, हमारा रूप है। हम ये कैसे कह सकते कि भगवान का रूप नहीं है? जिनसे हम आए हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका रूप नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जो भी गुण पेड़ में है, क्या वो बीज में नहीं होंगे? हम बीज प्रदह पिता भगवान कहते हैं। और उसी तरह से हम देखते हैं कि यहां पे कई वस्तु हैं जिनका कोई आकार नहीं है, वो भी भगवान के अंश हैं, भगवान के हिस्से हैं, तो भगवान निराकार भी होने चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते, कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो संत महात्मा है, वो समझते हैं कि परम सत्य को तीन श्रेणी में जाना जाता है। वो तीन श्रेणी है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म है भगवान या परम सत्य का निराकार रूप, परमात्मा है भगवान का साकार रूप जो कि हर अणु में और हर प्राणी के हृदय में है, और भगवान यानी स्वयं साक्षात श्री कृष्ण। तो इससे हम समझ सकते, ये भी हमारे कल्पना के बाहर है, ये कैसे हो सकता है कि साकार और निराकार एक ही साथ हो सकता है? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया है कि यह अचिंत्य भेद आभेद तत्व, कि एक ही साथ में भगवान निराकार भी हैं और वो साकार भी हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान के गुण इस प्रकार है। तो हमें भगवान को हमारी बुद्धि से जानना, भगवान को बुद्धि से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे, तब वो खुद ब खुद हमें अंदर से वो मार्गदर्शन कराएंगे और ज्ञान दे देंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे प्रीति सहित भजता है, उसे मैं अंदर से ही मार्गदर्शन करा लेता हूँ। और इस कलयुग में भगवान की भक्ति प्राप्त करने का मार्ग एक ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। इस कलयुग में एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वो है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। तो ये हरि का नाम लेने से हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है और धीरे धीरे से भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है, और जैसे हृदय की शुद्धिकरण हो जाते हैं, वैसे भगवान का साक्षात्कार धीरे धीरे शनै शनै हो जाता है। तो मेरा आपसे सब निवेदन यही है कि आप हर रोज सुबह दोपहर और शाम भगवान के नाम का जाप कीजिए, नियमानुसार कीजिए, और इस प्रकार से खुद ब खुद आप अनुभव करेंगे। भगवान की भक्ति सिर्फ बुद्धि के स्तर पर चर्चा की बात नहीं है, ये साक्षात्कार की बात है, अनुभव की बात है। इसलिए कृपया ये भगवान के नाम का जाप करते रहिएगा। भगवान के कोई भी नाम का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन कलि संतरण उपनिषद में ये खास, जो कि कलियुग के लिए उपनिषद है, इसमें ये महामंत्र का वर्णन किया गया है, इसलिए हम लोग ये महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना समय तक बैठकर ये प्रवचन सुना और आपने मुझे आपके लिए ये सेवा करने का मौका दिया। मैं यहाँ श्री कबीरवाड़ी के ट्रस्टीज का बहुत आभारी हूँ कि खास करके नवीन भाई, जिन्होंने कि हमें यहाँ आने का अवसर दिया है, और हर महीने वो हमें बुलाते हैं, इनकी बड़ी कृपा है, तो हमें वो भगवान की सेवा करने का भी मौका दे रहे हैं। तो हम आप सबके आभारी हैं, और आपसे मुलाकात फिर से अगले महीने में होगी। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 6। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम्। ततो न विजुगुप्सत। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित करके देखता है, जो समस्त जीवों को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं करता। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण बताते हैं कि वह सबसे परम सत्य हैं और उनके अलावा और कोई सत्य नहीं है। वो कहते हैं कि ये सृष्टि के पहले एकमात्र मैं ही था, ये सृष्टि के दौरान एकमात्र मैं ही हूं, और ये सृष्टि जब नाश हो जाएगी उसके बाद भी एकमात्र मैं ही रहूंगा। वो कहना चाहते हैं कि एकमात्र सत्य वही है, इसका मतलब है भगवान। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान इसी बात को बतलाते हैं। वो कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइगा। वो कहते हैं कि सबसे ऊंचा सत्य, सबसे परम सत्य मैं ही हूं, मुझसे ऊंचा कोई सत्य नहीं है, और बाकी जो भी सत्य हैं वो मुझ में ही हैं और मुझ पे आधारित हैं। जिस तरह से कि मणियों जो मणि होते हैं, जो हार की मणियां होती हैं, वो एक धागे पे आधारित होती है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान का मतलब है जो सब चीजों के आधार हैं, सबसे ऊंचे सत्य, सबसे परम सत्य। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ उन्हीं से आता है, वो सब चीजों के स्रोत हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि चाहे वो भगवान का धाम हो, चाहे वो ये भौतिक सृष्टि हो, चाहे वो जीवात्माएं हो, सब भगवान के अंश हैं, सब सारे जो सत्य हैं वो भगवान पे ही आधारित है, निर्धारित है। भगवान से स्वतंत्र हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान के अंदर है, भगवान का अंश है। श्रीमद् भागवत में जब नव योगेंद्र महाराज निमि को उपदेश देते हैं तो वो बताते हैं कि जब हम किसी चीज को भगवान से अलग देखते हैं, किसी चीज का हम भगवान से संबंध नहीं देखते, तो उस चीज को माया कहते हैं, उस दृष्टि को माया कहते हैं। वास्तव में कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं हो सकती, चाहे वो जीव हो या ये भौतिक दुनिया हो, पर जब हम ऐसे इस प्रकार इस दृष्टि से देखते हैं या भगवान को देख नहीं पाते या किसी चीज का संबंध भगवान से जान नहीं पाते, तो इसे माया कहते हैं। माया का मतलब है मां और या, कि जो नहीं है वो। हर चीज भगवान के अंदर है, तो ये सत्य ज्ञान का पहला कदम है। और इस सत्य को जो अच्छी तरह से जान लेते हैं, जिन्होंने इस पूरे सत्य को इसका अनुभव किया है, उन्हें महाभागवत कहते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष जिन्होंने भगवान को जान लिया है, जिन्होंने परम सत्य को जान लिया है, तो यहां पे ऐसे ही महाभागवत का वर्णन किया गया है। ये जो दुनिया है ये ऐसी जगह है जहां पे सारे जीव जो है भगवान को भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि भगवान कौन है, वो भूल चुके हैं कि स्वयं हम खुद कौन हैं और हमारा भगवान के प्रति रिश्ता क्या है, ये सृष्टि का उद्देश्य क्या है, ये भगवान ने सारी इतनी 84 लाख योनियां क्यों बनाई हैं, ये सब कुछ ये जीव भूल गया है। और जब कोई सौभाग्य से ऐसे जीव का किसी संत महात्मा से संपर्क हो जाता है तो वो ज्ञान के मार्ग पे चलता है और भगवान के भक्ति में लग जाता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लतावेज। अनंत कोटि ब्रह्मांड का भ्रमण करने के पश्चात, बहुत सारे योनियों में भ्रमण करने के पश्चात, कोई एक भाग्यवान जीव है जिसको गुरु और भगवान की कृपा मिल जाती है। और ये कृपा से क्या होता है कि उसके हृदय में भक्ति लता बीज आ जाती है। बहुत दुर्लभ चीज है। तो ऐसे भक्ति लता बीज जब हमारे हृदय में आ जाती है तो धीरे 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 हम भगवान की ओर प्रगति करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शुरू से लेकर ये सबसे ऊंचे महाभागवत के स्तर तक तीन श्रेणियां हैं। इनका नाम है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। अधिकारी यानी जो भक्त है। और ये तीन श्रेणियों में अंतर यही है कि श्रद्धा अलग अलग है। कनिष्ठ अधिकारी जो है वो नौसुखिया भक्त है, जिसने अभी भी भक्ति शुरू की है। और मध्यम अधिकारी जो है वो उससे थोड़ा आगे बढ़कर है, उसकी श्रद्धा और पक्की हो गई है। और उससे ऊंचा, सबसे ऊंचे जो है वो है उत्तम अधिकारी या महाभागवत। तो कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन इस प्रकार बताया गया है कि कनिष्ठ अधिकारी जो है वो भगवान की पूजा तो करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में ही भगवान रहते हैं और बाहर नहीं रहते कहीं, बस इसी में मंदिर भगवान रहते हैं। और वो दूसरों के प्रति किस तरह से व्यवहार करना, दूसरे भक्तों के प्रति किस तरह से व्यवहार करना वो नहीं जानते। और ऐसे कई लोग भगवान की पूजा भी करते हैं पर फिर भी दूसरे भक्तों के साथ कैसे उनका व्यवहार होना चाहिए वो ये नहीं जानते। और अक्सर वो लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं कि मेरा जो मार्ग है वो सही है और तुम्हारा मार्ग गलत है, मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से ऊंचा है, मेरा भगवान सबसे ऊंचा है, तुम्हारा भगवान नीचा है। इस प्रकार से ये झगड़े करते रहते हैं क्योंकि उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी जो है, ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है। किसी भी चीज से अगर धक्का पड़ जाए जीवन में तो वो श्रद्धा हिल सकता है। और वो उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए शास्त्रों के ज्ञान के बिना वो ये नहीं जान पाता कि भगवान का भक्त कौन है और भगवान का भक्त कौन नहीं है। और अगर कोई ऊंचे भक्त भी उनके सामने आ जाते हैं तो उन्हें पहचान नहीं पाता है। तो इसलिए ये कनिष्ठ अधिकारी है, ये सबसे प्रथम श्रेणी है भक्त की, भक्ति की। और जब कोई नौसुखिया भक्त होता है, बहुत सिंसियर रहता है, सिंसियर रहने के बाद धीरे 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 वो द्वितीय श्रेणी में प्रवेश करता है। तो ये द्वितीय श्रेणी कौन सी है? यह है मध्यम भक्त, मध्यम अधिकारी। जो मध्यम अधिकारी हैं वो कनिष्ठ अधिकारी से श्रद्धा में ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। श्रद्धा काफी अभी शक्तिशाली हो गई है और इसीलिए उनको शास्त्रों में पूर्ण विश्वास है। हालांकि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी काफी ज्ञान है और शास्त्रों के आधार से वो समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे जो भक्त हैं वो चार तरह के व्यक्तियों को देखते हैं, उनका व्यवहार अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होता है। सबसे पहले मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो भगवान को देखते हैं कि ये हैं भगवान और भगवान को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, किस तरह से मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करूं। इसीलिए ये उद्देश्य को अपने जीवन में सबसे ऊंचा रख के वो अनेक सारे नियमों का पालन करते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो तो नियम का भी पालन करते हैं, लेकिन वो बिना जान पहचान बिना जाने या बिना ज्ञान के वो फॉलो करते हैं। पर जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो अच्छी जानकारी से शास्त्रों के आधार से वो नियम का पालन करते हैं और इसीलिए वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अपना सारा जीवन बिताते हैं। तो ये पहली बात है कि मध्यम अधिकारी एक तरफ भगवान को देखते हैं, दूसरी तरफ वो भगवान के भक्तों को देखते हैं। और भगवान के भक्तों की भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। वो देखते हैं कि जो भक्त मेरे से कम अनुभवी हैं उनके प्रति वो मित्रता लगाते हैं, उनको उपदेश देते हैं, उनको गाइड करते हैं। जो भक्त उनके बराबर के होते हैं उनके प्रति वो दोस्ती रखते हैं, अपने मन की बात बताते हैं, उनके मन की बात सुनते हैं और आदान प्रदान होता है प्रेम का। और उनसे जो ज्यादा अनुभवी भक्त होते हैं, जो ऊंचे भक्त होते हैं, उनके प्रति जो मध्यम अधिकारी हैं वो सेवा करते हैं, उनके उपदेश का पालन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। इस प्रकार से मध्यम अधिकारी जो है वो अलग प्रकार के भक्तों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, पर सारे भक्तों के साथ में वो एक बात सही रहती है, वो है सेवा भावना। चाहे वो उसे कम अनुभवी हो, बराबर के हो या ज्यादा अनुभवी हो, सेवा की भावना हमेशा रहती है। तो यह मध्यम अधिकारी जो भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। और तीसरी जो श्रेणी है वो ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि अज्ञानी है, भगवान को नहीं जानते लेकिन हृदय से साफ है। ये तीसरी श्रेणी में ऐसे लोगों को देखते हैं और उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा रहता है, वो उनके हृदय में करुणा जागती है और फिर वो जाकर उनको उपदेश देते हैं, भगवान की भक्ति में लाने के लिए वो प्रयास करते हैं। और चौथा, वो ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, जो नास्तिक हैं और जो भगवान के नाम पे भी भगवान का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं और भगवान की निंदा करते रहते हैं, भगवान के भक्त की निंदा, भक्तों की निंदा करते रहते हैं। तो जो मध्यम अधिकारी है ऐसे नास्तिक लोगों से, ईर्ष्या व्यक्तियों से दूर रहता है, संग नहीं करता है। जब चैतन्य महाप्रभु को यह पूछा गया कि भक्त कौन है, वैष्णव कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि असत्संग त्याग ए वैष्णव चार, कि जो असत्संग को त्याग देता है, जो अभक्तों का संग नहीं करता है, वही भक्त है। क्योंकि भक्तों को अभक्तों का संग बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो इस तरह से मध्यम अधिकारी जो हैं ये चार अलग परिस्थितियों में अलग व्यवहार करते हैं। ये मध्यम अधिकारी हैं वो, उनकी श्रद्धा काफी पक्की हो जाती है इसलिए उनको श्रद्धावान कहते हैं, पर फिर भी अभी तक शास्त्रों के बारे में ज्ञान इतना बड़ा नहीं है कि वो सब सारे दूसरे लोगों को भी कन्विंस कर सके, पर अपने लिए उनकी श्रद्धा काफी है, मजबूत है। खास करके भगवान के नाम में उनकी श्रद्धा काफी मजबूत है। तो जब ऐसे मध्यम अधिकारी सिंसियरली भगवान की सेवा करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, जैसे भगवान के नाम का जाप करना, सत्संग में आना, शास्त्रों का अध्ययन करना, इस प्रकार धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करते रहते हैं मध्यम अधिकारी, और फिर तीसरी श्रेणी में पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं उत्तम अधिकारी या महाभागवत। तो ये महाभागवत या उत्तम अधिकारी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। और यहाँ क्या बताया गया है कि जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित करके देखता है, जब व्यक्ति, जब भक्त ये उत्तम अधिकारी के स्तर में पहुंच जाता है तो हर चीज को वो भगवान से ही संबंधित देखता है, यानी वो सत्य को पहचानता है। जैसे चीजें हैं वैसे ही वो देखता है। हम जो देख रहे हैं हम सत्य नहीं देख रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, हालांकि हम सब कुछ अभी हमारे आमने सामने देख रहे हैं, हम आप सबको देख रहे हैं, ये माइक देख रहे हैं, सारा बिल्डिंग देख रहे हैं, पर ये दृष्टि से नहीं देख रहे कि ये सब कुछ भगवान का अंश है। पर जो महाभागवत होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं, वो सबको भगवान के अंश देखते हैं, भगवान के अंदर देखते हैं। और ये तो बहुत ऊंचा स्तर है। और ये हृदय का पूर्ण सिद्धिकरण होने के पश्चात ही ये स्थिति की प्राप्ति हो जाती हो सकती है। तो महाभागवत उनका एक ही काम होता है कि हमेशा वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, एक क्षण भी वो भगवान की सेवा से दूर हटना नहीं चाहते। और कोई वजह से अगर भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा वो नहीं कर पाते हैं एक क्षण भी, तो बहुत उनको बुरा लगता है, बहुत पश्चाताप होता है कि एक क्षण भी मैं भक्ति नहीं कर पाया। नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में बताते हैं कि भक्ति का लक्षण ये है कि जब कोई भी भक्त भगवान को एक क्षण के लिए भी भूल जाता है तो उसे बड़ा दुख हो जाता है कि एक क्षण मैंने गंवा दिया, भगवान की सेवा मैंने नहीं की। तो ये महाभागवत की दृष्टि होती है कि हर क्षण अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगाता है, हमेशा भगवान के लीला में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के जो पार्षद हैं उनके उपदेश में हमेशा तन्मय रहता है, तल्लीन रहता है इन चीजों में, और यही सोचता रहता है कि इस वक्त कैसे भगवान की सेवा और भी अच्छी तरह से करूं, किस तरह से मैं भगवान की जो लीला है इसको दूसरों को वर्णन करूं। यही जो मानसिक स्थिति होती है उत्तम अधिकारी की, वो कभी भौतिक दृष्टि से किसी चीज को नहीं देखते, वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है और वो सब जगह भगवान को ही देखते हैं। हालांकि वो ये भौतिक जो चीजें हैं उनको भी देखते हैं, पर वास्तव में क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत हो गई है, इसलिए वो हर जगह हर क्षण भगवान का दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो कहते हैं कि संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत हैं, जो बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, वो हमेशा अपने हृदय में, हृदयेषु हृदय में क्या देखते हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर यानी भगवान को देखते हैं अपने हृदय में, ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे भगवान जिनके की अचिंत्य गुण है, ऐसे भगवान को वो हमेशा अपने हृदय में देखते हैं। और ये कैसे संभव है कि वो हमेशा देखते हैं, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना, क्योंकि उनके नेत्रों में उन्होंने प्रेम का अंजन लगाया हुआ है, भक्ति का अंजन लगाया हुआ है, इसीलिए वो हर क्षण हर जगह भगवान को देख पाते हैं। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जबकि वो भगवान को नहीं देख पाते। भगवान का दर्शन होना ये कोई भौतिक नेत्रों की बात नहीं, भौतिक दृष्टि की बात नहीं है। भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, ये हमारे भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते भगवान को। नारद जी और एक जगह बताते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। वो कहते हैं कि जब हमारी सारी इंद्रियां जो हैं ऋषि की, हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान जो कि ये सारी इंद्रियों के मालिक हैं, हम इनकी सेवा में लगाते हैं, तो क्या होता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधियों से हम मुक्त हो जाते हैं और हमारी इंद्रियां जो है वो बिल्कुल शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। इस वक्त हम कई उपाधियों से बंधे हुए हैं, कोई सोच रहा है कि मैं हिंदू हूं, कोई सोच रहा है मैं मुसलमान हूं, कोई सोच रहा है मैं अमीर हूं, कोई सोच रहा है मैं गरीब हूं, कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं पुरुष हूं, कोई सोच रहा है मैं स्त्री हूं, कोई सोच रहा है मैं तो गुजराती हूं, कोई सोच रहा है मैं पंजाबी हूं, कोई कहता मैं भारतीय हूं, कोई कहता मैं अमेरिकन हूं। इस प्रकार से अनेक उपाधियां हमने हमारे लिए बना रखी हैं, पर जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो ये सारे भौतिक उपाधियों से हम परे हो जाते हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, और इंद्रियां जब शुद्ध हो जाती हैं तो क्या होता है, हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसे शुद्ध इंद्रियों से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा के चक्षु से हम भगवान को देख सकते हैं, ये भौतिक दृष्टि से नहीं, आत्मा के आंखों से। इसलिए चाहे व्यक्ति कोई अंधा भी हो फिर भी वो 24 घंटे भगवान को देख सकता है, अगर वो शुद्ध भक्त है तो। ये बात है, तो भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं है किसी व्यक्ति को भगवान को देखने के लिए, अगर कोई अंधा भी हो पर अगर वो शुद्ध भक्त है तो 24 घंटे भगवान को देख सकते हैं। पर अगर किसी आदमी के जो नजर है बिल्कुल तेज है, 6x6 सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकता है पर हृदय अशुद्ध है तो भगवान को कभी नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए ये जो महाभागवत है हर जगह हर क्षण भगवान को ही देखते हैं। श्रीमद् भागवत में कई महाभागवत भक्तों का चरित्र का वर्णन दिया गया है पर इनमें से प्रहलाद भक्त प्रहलाद का स्थान जो है बड़ा विशेष स्थान है क्योंकि इनकी लीला के बारे में सबसे लंबा वर्णन है। कई अध्याय में एक सिर्फ प्रहलाद महाराज का वर्णन है। क्यों इतना बड़ा वर्णन है इनका? क्योंकि वो इतने ऊंचे महाभागवत थे, सिर्फ 5 साल के बालक थे। और आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार से उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको हैरान किया, उनको खत्म करने का प्रयास किया। जब वो देख रहे थे कि मेरा जो बच्चा है वो विष्णु की पूजा कर रहा है तो बहुत क्रोधित हो गए। और हिरण्यकशिपु जो है वो तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे सारे ब्रह्मांड में, पर जब वो देखने लगे कि मेरा बालक, मेरा खुद का बालक, वो मेरे सबसे परम शत्रु की पूजा कर रहा है तो उनसे रहा नहीं गया। तो कहने लगे कि आपको वास्तव में मेरी पूजा करनी चाहिए क्योंकि मैं सबसे सारे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। उनके जो टीचर्स थे, उनके शिक्षक थे, उनको डांटने लगे कि आपने क्या सिखा रखा है इसको। और टीचर तो उनके शिक्षक कहने लगे हमने तो कुछ सिखाया है नहीं, हमें तो पता नहीं कि इसने कहा ये सब सीख लिया है, उल्टा हम ये चाहते हैं कि ये अभी हमारे कक्षा में नहीं आए, हमारे वो जो स्कूल में नहीं आए, क्योंकि यहाँ आकर जो दूसरे विद्यार्थियों को भी वो खराब कर रहा है, उनको आके प्रचार करता है, उपदेश करता है कि आप सबको विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए ये सारे जो वातावरण को खराब कर रहा है ये बच्चा। तो सब बहुत प्रयास करने के बाद भी ये शिक्षक जो है जिनका नाम था संडामर्क, वो प्रहलाद को ठीक नहीं कर पाए। प्रहलाद तो भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ बात नहीं करता था और कुछ समझ ही नहीं पाता था। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रहलाद को खत्म करने की योजना बनाई। और आप जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने प्रहलाद को एक पहाड़ से नीचे गिराया, उनको अग्नि के अंदर डाला, हाथी के पैरों के तले कुचलने का प्रयास किया, त्रिशूल के द्वारा उनकी हत्या करने का प्रयास किया, इस जादू टोना करके उनको खत्म करने का प्रयास किया। कितने तरीकों से प्रहलाद को खत्म करने की चेष्टा के बावजूद प्रहलाद को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए किसी भी समय प्रहलाद ने अपने आप की रक्षा करने के लिए भी कोई एक उंगली भी नहीं उठाई। और यहां तक कि प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना भी नहीं की कि आप मुझे बचाइए। जब हमारे जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई हो जाती है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, ये सब ठीक नहीं किया आपने, मैंने क्या किया था, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे से ज्यादा बुरे करने वाले लोग कितने हो रहे हैं, आपने उनको कुछ नहीं किया, वो तो बड़े हंसी मजाक में है, अब मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया। पर प्रहलाद ऐसे नहीं थे। प्रहलाद को पूर्ण विश्वास था कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं। भगवान परम सत्य है और यही एकमात्र सत्य है, ये जो बाकी सारे चीजें हैं ये सब माया है। जो मुझे पहाड़ से फेंका जा रहा है, मुझे अग्नि में डाला जा रहा है, ये तो भौतिक शरीर का सवाल है। भौतिक शरीर तो नाशवान है, भौतिक शरीर में तो कोई परम, भौतिक शरीर में तो कोई सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा में है, सत्य भगवान में है और सत्य आत्मा और भगवान के रिश्ते में है। तो इसलिए प्रहलाद क्योंकि ऊंचे से ऊंचे महाभागवत थे इसलिए वो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते थे। और ऐसे स्मरण के लिए की वजह से वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और जैसे वो पहाड़ से गिर रहे थे, गिरते गिरते भी वो बिल्कुल डरे नहीं। जब वो उस समय गिरते गिरते भी वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, जब अग्नि के अंदर वो बैठे हुए थे, होलिका ने उनको अपने गोद में बिठाया, होलिका को ये वरदान दिया गया था कि अग्नि में अग्नि उसको नाश नहीं कर सकता, पर होलिका ने कहा कि मैं प्रहलाद को मेरे गोद में लेके बैठती हूँ, और इस प्रकार से प्रहलाद नाश हो जाएगा और मैं रह जाऊंगी। पर हुआ उल्टा बिल्कुल, और प्रहलाद बिल्कुल उनका शरीर का एक बाल भी नष्ट नहीं हुआ और उल्टे जो है होलिका का नाश हो गया। तो इस प्रकार उनको गर्म तेल में भी डाला गया। गर्म तेल में डालने के बाद भी प्रहलाद के सारे शरीर में एक बाल भी नहीं जला, कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रहलाद जो थे, क्योंकि वह हमेशा भगवान के स्मरण में बिल्कुल तन्मय रहते थे, उनके विचार में भी उनको बिल्कुल भय की बात ही नहीं थी, निर्भय अवस्था में वो जाते थे, और इसीलिए उन्हें इतना सम्मान दिया जाता है, इतना ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो यह है महाभागवत की स्थिति। 24 घंटे वो भगवान का स्मरण करते हैं, एक भी क्षण भगवान को कभी भूलते नहीं है, इसीलिए वो हमेशा निर्भय रहते हैं। कोई भी परिस्थिति में वो जानते हैं कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो सही है, और जो भी कुछ हो रहा है मुझे ये मालूम है कि सत्य सिर्फ यह है कि मेरे भगवान जो हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनका भक्त हूँ और मैं उनका हमेशा भक्त रहूँगा, बस यही एक सत्य है। ये बहुत ऊंचे विचार हैं। ऐसे विचारों को, ऐसी श्रद्धा हमारे जीवन में लाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत जन्म लग जाते हैं इसके लिए। ऐसे दृढ़ निश्चय के लिए, ऐसे विश्वास के लिए बहुत समय लगता है। येषां क्वन्तगतं पापां जनानां पुण्यकर्मणां ते मोहद्वन्द निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद जब हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और जब हमारी सुकृति का जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है, उस समय जो भक्त है वो दृढ़ता से भगवान की भक्ति कर सकता है, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि भगवान की भक्ति बहुत दृढ़ता से कर रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा से कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये पूर्व जन्म के संस्कार है। पूर्व जन्म से, बहुत पहले जन्मों से, जन्म जन्म से ये भक्ति मार्ग में उन्होंने प्रगति शुरू की है, प्रवेश किया है और अभी इसीलिए ये स्थान में पहुंचे हैं। तो महाभागवत का स्थान यही होता है कि वो हर जगह भगवान को देखते हैं, और इसीलिए जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहा बहुत क्रोध में आकर कि तुम एक छोटे से बालक हो, 5 साल के बालक हो, और मैं ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मेरे नाम को सुनकर भी बड़े देव देवता थरथराते हैं, कांपते हैं, और तुम मेरे छोटे, मेरे ही बच्चे हो, 5 साल के बालक हो, पर फिर भी मेरे इतने प्रयास करने के बाद भी तुम नहीं मर रहे हो और तुम बिल्कुल घबराते भी नहीं हो, तुम्हें कौन इतनी शक्ति दे रहा है, ये मुझे राज बताओ। तो प्रहलाद कहने लगा कि पिताजी, जो व्यक्ति आपको शक्ति दे रहे हैं ये सब करने के लिए, सारे ब्रह्मांड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, वही व्यक्ति जो है वो मुझे भी शक्ति दे रहे हैं, और वो है विष्णु। तो हिरण्यकशिपु को आया बड़ा क्रोध, विष्णु 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 कहाँ है तुम्हारा विष्णु, क्या इस खंभे में है? तो प्रहलाद कहने लगे, प्रहलाद तो सभी जगह उनको विष्णु भगवान को देख रहे थे, वो कहने लगे जरूर है, वो हर कण में है, मेरे सामने या हवा में है, हर अणु में है, तो अवश्य वो खंभे में भी है, क्यों नहीं होंगे। तो ऐसे देखकर जब हिरण्यकशिपु ने खंभे को तोड़ डाला, उस समय भगवान का ऐसा भयंकर भयानक रूप वहां से प्रकट हुआ कि हिरण्यकशिपु के हृदय में बिल्कुल घबराहट पैदा हो गई, और वो निकले वहां से नरसिंहदेव भगवान। और फिर तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाभागवत होने के नाते प्रहलाद को श्रद्धा थी कि भगवान सब जगह है, वो देख रहे थे भगवान तो यहाँ भी है, खंभे में भी है, सब जगह है। इसीलिए यही श्रद्धा हमें भी होनी चाहिए, भगवान हर जगह है पर सिर्फ हम उनको देख नहीं पाते हैं, पर ये हमारी कमी है, हमारी दृष्टि नहीं है, हमारे दिव्य चक्षु नहीं है। इसीलिए ये भक्ति मार्ग पे हमें सद्गुरु के शरण में आकर जब हमें गाइडेंस मिलता है, हमें शिक्षा मिलता है, उस समय हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं और फिर मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के स्तर पे हम पहुंच सकते हैं एक न एक दिन। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, जो प्रहलाद ने स्वयं नवदा भक्ति का मार्ग बताया था, सिर्फ ये नवदा भक्ति का मार्ग का पालन करके हम भी यही महाभागवत के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद जैसे भक्त तो शायद नहीं बने, पर अवश्य हमें भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर भगवान हमें चाहे, भगवान चाहें तो हमें भी बहुत आसानी से महाभागवत बना सकते हैं, उनके शुद्ध भक्त बना सकते हैं, पर हमें वो तीव्रता दिखानी चाहिए, हमें वो इच्छा प्रकट करवानी चाहिए। प्रहलाद बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 तरह के भक्ति के विधियां बताते हैं कि इनका पालन करने से धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करते हैं। तो हमें इनमें श्रद्धा रख के ये करते रहना चाहिए और भगवान में पूरा भरोसा रख के हमें उत्साह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे इस जन्म में न हो, अगले जन्म में न हो उसके बाद के जन्म में अवश्य एक न एक दिन हमें सफलता प्राप्त होगी। और सफलता क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। तो अगले श्लोक में, इस परिषद के 7वें श्लोक में यहां बताया गया है, कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है, तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? यह 7वें श्लोक में भी महाभागवत के वर्णन ही अभी जारी है। महाभागवत के दृष्टि के बारे में और वर्णन किया गया है, ये बताया गया है कि वो तो भगवान को हर जगह तो देखते हैं ही, पर वो हर व्यक्ति को भी वो सही स्तर में देखते हैं, भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, हर प्राणी को जीवात्मा के रूप में देखते हैं, वो शरीर से वो कोई लगाव नहीं रखते। भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो ये पंडित कौन है, पंडित व्यक्ति कौन है? आजकल तो हर व्यक्ति को पंडित कहते हैं, पंडित ये पंडित फलाना पंडित, वास्तव में पंडित कौन है? समदर्शिना होने चाहिए। समदर्शिना का मतलब क्या है? कि वो हर व्यक्ति को समझे, हर प्राणी को वो आत्मा के रूप में देखते हैं, वो समझते हैं कि ये भगवान के अंश हैं, ये ऐसा नहीं, वो शरीर के स्तर पर नहीं देखते कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। ये श्लोक में, भगवद गीता के श्लोक में बताया गया है कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं, पंडित समदर्शन पुरुष होते हैं, वो एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण को, एक हाथी को, एक कुत्ते को, एक चांडाल को और गाय को समान दृष्टि से देखते हैं, वो भेदभाव नहीं करते कि ये चांडाल है और ये ब्राह्मण है, बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, या ये कुत्ता है और ये ब्राह्मण है, इनमें भी भेदभाव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो सिर्फ शरीर अलग अलग है, इनके अंदर आत्मा तो भगवान का अंश ही है, ये कुत्ते के शरीर के अंदर भी आत्मा है और ये ब्राह्मण के शरीर के अंदर भी आत्मा है, आत्मा तो भगवान का अंश है। वो देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण के शरीर में जो आत्मा है, इसने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और दुरुपयोग करने की वजह से उसे ये बुरा परिणाम मिला है कि ये कुत्ते का देह प्राप्त हुआ है, और ये दूसरे शरीर है, ये जो ब्राह्मण का शरीर है, इसके अंदर जो जीवात्मा है, इसने अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग किया है, इसलिए इसको एक अच्छा शरीर मिला है जिससे कि वो भगवान की प्राप्ति कर सके। तो इस दृष्टि से देखते हैं, वो दोनों को, दोनों के कार्य को न देखते हुए वो दोनों की भलाई चाहता है और दोनों का उद्धार करना चाहता है, जो समदर्शी पुरुष होते हैं। वो जानते हैं कि तत्व में जो जीवात्मा है वो भगवान से एक है। जो बात यहां बताई गई एकत्व, ये एकत्व जो है वो तत्व में एकता की बात है। जिस तरह से चिंगारी और अग्नि, चिंगारी और अग्नि तत्व में एक है, चिंगारी भी अग्नि है, पर लेकिन चिंगारी जब अग्नि से अलग हो जाती है तो उसकी कीमत नहीं रह जाती। जब चिंगारी अलग होकर पड़ी रहती है तो फिर वो उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहता, कोई फायदा नहीं होता उसका। पर एक चिंगारी अग्नि के साथ जुड़ जाती है तो उसमें संबंध होता है। तो इसीलिए चिंगारी है ये बहुत छोटा कण है अग्नि का। उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो अणु है और भगवान विभु है। मात्रा में दोनों अलग हैं पर तत्व में एक ही। जिस प्रकार से पानी के, जो सागर के पानी आप लेंगे उसका एक बूंद लेंगे, तो बूंद में और सागर के पानी में एकता भी है और भिन्नता भी है, भिन्नता और अभिन्नता दोनों है। क्यों? क्योंकि दोनों पानी का तत्व एक ही है। प्रोपोर्शन में, पर लेकिन बूंद में बहुत कम पानी है। बूंद में आप नौका या जहाज नहीं डाल सकते, बूंद में बड़े बड़े मछलियां नहीं जा सकती, पर जो समुन्द्र है या दरिया है उसमें बहुत बड़े बड़े मछली भी जा सकते हैं, बड़े बड़े नौके भी जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इस तत्व को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सुंदर तरीके से समझाया है कि तत्व में एकता लेकिन वो मात्रा में अलग अलग है। तो इस प्रकार जो महाभागवत है, जो पंडित समदर्शन पुरुष है, वो सब प्राणियों को देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे एक ही व्यवहार करते हैं। हालांकि वो देखते हैं कि शेर के शरीर में भी आत्मा है और एक ब्राह्मण के शरीर में भी आत्मा है। वो शेर से और ब्राह्मण से अवश्य अलग व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शेर के साथ जाकर हाथ मिलाएंगे क्योंकि वो समादर्शिना है। पर वो जानते हैं क्योंकि ये इसका शरीर ऐसे है, अलग है, इसलिए शरीर, ये जो शेर का व्यवहार है मेरे प्रति अलग होने वाला है। पर फिर भी हम देखते हैं कि ऐसे जो महाभागवत पुरुष होते हैं वो जानवरों का भी दिल पिघला देते हैं। ये देखा जाता है, ये महाभागवतों के बारे में बताया जाता है कि चाहे वो बड़े से बड़ा वो जो जो पापी व्यक्ति क्यों ना हो, और बड़े से बड़ा घोर अंधकार के अज्ञान में जो पड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, जब ऐसे महाभागवत के सामने चले आते हैं तो उनका दिल जो है खुद ब खुद नम्र बन जाता है। यह है महाभागवत की शुद्धता का परिणाम। जहां भी जाते हैं जैसे महाभागवत शुद्ध भक्त, सारे वातावरण को वो शुद्ध कर डालते हैं। भक्ति का माहौल सब जगह फैला देते हैं। भगवान को अपने हृदय में क्योंकि वो ले जाते हैं, इसलिए हर जगह जहां भी वो जाते हैं उनको तीर्थ स्थान कहते हैं, ऐसे महाभागवत को। क्योंकि तीर्थ स्थान का मतलब क्या है? तीर्थ स्थान का मतलब है कि जहां भगवान मौजूद हैं और जहां आप भगवान के जो उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। पर जो महाभागवत ऐसे हैं कि अपने हृदय में भगवान को हमेशा लिए चल रहे हैं, जहां भी जाते हैं वो भगवान को ही लिए जा रहे हैं। इसीलिए वो जहां भी जाते हैं, विदुर जो हैं वो क्या, वो उनके बारे में बताया जाता है कि ये तो एक चलते फिरते एक तीर्थ स्थान है। जहां भी जाते हैं भगवान को साथ में ले जाते हैं, और इसीलिए सारे जहां भी जाते हैं उस सब जगह को शुद्ध और पवित्र कर डालते हैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये महाभागवत या दो श्लोकों में जो यहां बताया गया है, ऐसे महाभागवत को फिर चिंता की क्या बात है? उनको भ्रमित अवस्था आने की बिल्कुल शक्यता है ही नहीं। और पिछले श्लोक में हमने देखा था कि विजुगुप्सते, कि वो कभी किसी से घृणा नहीं करते, कभी किसी भी वस्तु से द्वेष नहीं करते या किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहते। ये राग और द्वेष इससे बिल्कुल परे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं
कि जो व्यक्ति अपने स्थान को, अपने आप को जान चुका है, जो भगवान को जान चुका है और भगवान और अपने आप में जो विस्तार जान चुका है, ऐसा ही व्यक्ति जो है वो सही ज्ञान में स्थित होता है और वो कभी भ्रमित नहीं हो सकता, कभी चिंतित अवस्था में नहीं पड़ सकता। तो ऐसे महाभागवत के हमें शरण में जाने चाहिए। ऐसे महाभागवत को तत्व दर्शन कहते हैं, जिसने तत्व का अनुभव किया है, और ऐसे तत्व दर्शन महापुरुष के शरण में आकर हमें सीखना चाहिए। और श्री कृष्ण यही बात बताते हैं कि जब हम ऐसे महाभागवत के शरण में आकर सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। वो कहते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषानि द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम ऐसे महाभागवत के शरण में जाओगे, तत्व दर्शन पुरुष के शरण में जाओगे और तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो क्या ज्ञान प्राप्त करोगे। यज्ञात्वा क्या जानोगे कि सब कुछ जो है, सब प्राणियां जो है वो मुझ में है, वो मेरे अंश हैं और वो मेरे हैं। सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, हमारा शरीर भी भगवान का है, हमारी आत्मा भी भगवान की है, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसे महाभागवत पुरुष पूरी तरह से भगवान के शरण रहते हैं और कोई सहारा नहीं लेते हैं, जिस तरह से प्रह्लाद ने और कोई सहारा नहीं लिया, उनका एकमात्र सहारा था कि वो हमेशा 24 घंटे भगवान का स्मरण करते थे, और कोई सहारा नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेना की प्रार्थना की, सेना को आके मुझे बचाना चाहिए, पुलिस को फोन नहीं किया, या उनके जो हाथों में कोई शस्त्र नहीं उठाए, या अपने हाथों से उनको अपने आप को बचाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि पूरी तरह से वो शरणागत हो गए थे, पूरी तरह से एक ही सहारा। अवश्य ये लोग मेरी सहायता करने ही वाले हैं, पर क्या हुआ, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। फिर उन्होंने क्या सोचा द्रौपदी ने कि मैं मेरी शक्ति से मैं मेरी रक्षा करूंगी। तो दोनों हाथों से उन्होंने अपने वस्त्र पकड़े, पर फिर भी क्या हुआ, दुशासन ज्यादा शक्तिशाली था। फिर द्रौपदी ने सोचा कि अब एक ही सहारा रह गया है, और उन्होंने हे गोविंद करके पुकारा, कृष्ण को पुकारा। पर उस समय सिर्फ एक हाथ ऊपर किया और एक हाथ से अपने वस्त्र को पकड़ा, एक हाथ अभी तक वस्त्र पे था, वो हाथ अभी तक छोड़ा नहीं था, पर फिर भी दुशासन ज्यादा शक्तिशाली थे, कृष्ण अभी तक नहीं आए। पर जब द्रौपदी समझ गए कि हाँ अब कोई चारा नहीं रहा, ये भी हाथ छोड़ दो, जब दोनों हाथ छोड़कर हाथ ऊपर फैलाए कि हे कृष्ण हे गोविंद आप अब मुझे बचाइए, आपके सिवाय मेरा अब कोई सहारा नहीं है और कोई मुझे नहीं बचा सकता सिवा आपके, जब ये परिस्थिति उनकी आई तब जाकर के कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। कैसा अवतार लिया, उनके साड़ी के रूप में अवतार लिया, और दुशासन उनके वस्त्र खींचते जा रहे थे, पर वस्त्र साड़ी का कोई अंत ही नहीं था। इसी प्रकार जब तक हम पूरी तरह से दूसरे सहारों को त्याग नहीं देंगे, ये विश्वास करेंगे कि सिर्फ भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं, भगवान ही एकमात्र हमारी रक्षा कर सकते हैं और करेंगे, अगर हमारी श्रद्धा ऐसी हो तो ऐसी श्रद्धा हो हमारी, तो हम महाभागवत के स्तर पर जा सकते, नहीं तो नहीं। ये समझना बहुत आवश्यक बात है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैविम प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं, क्यों, दैविम प्रकृतिम आश्रितः, जिसने मेरे दिव्य प्रकृति का आश्रय लिया है। हमें आश्रय तो लेना है ही, सवाल सिर्फ ये है आप किसका आश्रय ले रहे हैं। आपके डॉक्टर का आश्रय ले रहे हैं, आपके पैसे का आश्रय ले रहे हैं, आप पुलिस का आश्रय ले रहे हैं, आप सेना का आश्रय ले रहे हैं, आपके परिवार के सदस्यों का आश्रय ले रहे हैं, या आप बड़े बड़े नेताओं का सहारा ले रहे हैं, किसका आश्रय ले रहे हैं आप। क्या हम माया का आश्रय ले रहे हैं, नहीं। भगवान बताते हैं दैविन प्रकृति माश्रिता,
सिर्फ जो व्यक्ति भगवान के दिव्य शक्ति या स्वयं भगवान के पूर्ण आश्रय में आ जाता है तब जाकर के उसे महात्मा कहलाता है।
तो महात्मा कौन है?
कोई साधारण व्यक्ति महात्मा नहीं है।
महात्मा का मतलब है जिसने पूरी तरह से भगवान के दिव्य शक्ति के प्रति आश्रय लिया है। और ऐसे लिए ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? भजन के अनन्य मनसो, अनन्य भाव से, अनन्य यानी सिर्फ तीव्रता से, एक ही एकमात्र एक दृष्टि से, व्यवसायात्मिका बुद्धि, ऐसे बिल्कुल दृढ़ता से वो भगवान के भजन कीर्तन सेवा करते हैं। तो ऐसे लोगों को महात्मा बताते हैं। तो इन दो श्लोकों में उत्तम अधिकारी, महाभागवत, महात्मा, शुद्ध भक्त, जो भी आप कहें, ऐसे व्यक्ति का वर्णन यहां बताया गया है ये इस उपनिषद के दो श्लोकों में। तो आज हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और आपको कोई आपके कोई प्रश्न हो या कोई टीका हो तो आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए और सारे दूसरे आश्रय छोड़ देने चाहिए। तो क्या हमें हमारे विवेक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए या नहीं? शुरू शुरू में तो हमारे पास इतनी श्रद्धा नहीं होती है। ये श्रद्धा अचानक नहीं आ सकती। श्रद्धा ये अनुशीलनम, ये धीरे 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 से ये श्रद्धा बढ़ता है, इतनी आसानी से नहीं। इसलिए शुरुआत में विवेक बुद्धि होना आवश्यक है। पर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सिंसियर है, जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत ही तीव्रता से प्रयास करता है, मैं उसे सद्बुद्धि दे देता हूं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे भाव से मेरी पूजा करता है, मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, मैं उसको मार्ग उसका मार्गदर्शन करा देता हूँ। मैं उसको सद्बुद्धि दे देता हूँ जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर सके और जिससे कि उसकी श्रद्धा बढ़ जाए। श्रद्धा सिर्फ भगवान की कृपा से बढ़ सकती है। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? जब हम ये नवदा भक्ति के नियम हैं उनको अच्छी तरह से पालन करें, सिंसियरली पालन करें। जब भगवान हमारी तीव्रता को, हमारी इच्छा को देखते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर वो उनकी कृपा नौछावर करते हैं, तब हमारे हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती है। तो शुरुआत में विवेक बुद्धि का होना आवश्यक है। और ये विवेक बुद्धि किस तरह से हम इसको बढ़ाएं? सद्गुरु के शरण में आकर। सद्गुरु हमें सिखाएंगे कि किस तरह से हमारी विवेक बुद्धि को हमें तेज करना है। अब हमारी बुद्धि जो है वो अभी दूषित है, वो अभी अपवित्र है, क्योंकि इंद्रिय भोग में, इंद्रियों के विषयों के भोग में लगी हुई है। हमारी बुद्धि हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें किस तरह से दुनिया का भोग करना है, ये हमें अच्छे व्यवस्था करने में अभी लगी हुई है बुद्धि। तो ये बुद्धि को शुद्ध करना है, तो ये सद्गुरु के शरण में आकर हो जाता है। और तब धीरे धीरे से भगवान ही हमारी श्रद्धा को पक्का कर देते हैं। तो विवेक को कभी त्यागना नहीं चाहिए। शुरुआत में हमें ये विवेक बुद्धि हमेशा रखनी चाहिए, पर आगे चलकर जब हम भक्ति में आगे आगे बढ़ते रहते हैं तो हम जान जाते हैं कि भगवान हमारे शरीर को तो परे हैं ही, पर हमारे मन के तो परे हैं ही, पर हमारे बुद्धि के और हमारे अहंकार के भी परे हैं। तो आश्रय हमें विवेक बुद्धि का लेना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान से, ये समझकर कि भगवान हमारे बुद्धि के परे हैं। सिर्फ बुद्धि से हम भगवान को कभी जान नहीं सकते, पर बुद्धि का सहारा लेकर हम हमारी श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं।
परमात्मा स्वरूप अर्पण करा कर।
मूर्ति के बारे में कोई सवाल है, आप ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा रहेगा। क्योंकि आत्मा हमेशा आत्मा ही है और परमात्मा हमेशा परमात्मा ही है। मामय वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन शिष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो जीव है वो मेरा नित्य अंश है, सनातन। वो ये कभी नहीं कहते कि जीव जो है कभी भूतकाल में वो मेरा अंश नहीं था, वो परमात्मा था, पर अभी मेरा अंश बन गया है, अभी आत्मा बना है और आगे चल के भविष्य में वो फिर से परमात्मा बन जाएगा, ऐसे कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि जीव मेरा अंश हमेशा के लिए है, सनातन है। और इसी तरह से भगवान दूसरे अध्याय में ये भी बताते हैं, न त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी समय नहीं था जबकि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और नहीं भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब हम नहीं रहेंगे, मैं भगवान ही रहूंगा। कृष्ण कहते हैं और आप मेरे अंश ही रहोगे, अंश अंश रहेंगे, पूर्ण पूर्ण रहेगा, और अंश और पूर्ण के बीच में जो रिश्ता है वो भी सनातन रहेगा। अंश अंश जैसे मैंने बताया, अंश सनातन अंश है, हमेशा के लिए अंश अंश ही रहता है, अंश कभी पूर्ण नहीं बन सकता, सनातन शब्द कभी नहीं बन सकता। भगवान को बन नहीं सकता, भगवान है, भगवान बनाए नहीं जाते। आजकल हम देखते हैं समाज में जैसे हर इक्का दुक्का आदमी जो है अपने आप को भगवान कहता है, कोई भगवान बनने का सवाल नहीं है, चाहे आप भगवान हैं या नहीं है, बस इसमें तो दो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भगवान बन सकते हैं, भगवान बनने का सवाल ही नहीं उठता। भगवान भगवान है और जीव जीव है, रूप में एक वो दूसरी बात है, पर जीव जीव अणु है, कण है, कण अणु, एटम एटमिक, और भगवान विभू है, इनफाइनाइट असीमित। और अगले श्लोक में अगली बार हम देखेंगे कि भगवान असीमित रूप कैसे है, ये हम अगले श्लोक में अगली बार देखेंगे। तो जहां तक आत्मा परमात्मा का सवाल है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, परमात्मा भी नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, और उनके दोनों के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो भी नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। देखिए जैसे मैंने समझाया, तत्व में आत्मा और परमात्मा एक ही है, तत्व में, पर मात्रा में नहीं है, मात्रा में नहीं है, अंश है, जैसे मैंने बताया, नहीं कभी भी नहीं हो सकता ये, अंश हमेशा सनातन, ये शब्द सनातन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आत्मा भी अपने स्थान में पूर्ण है और भगवान अपने स्थान में पूर्ण है, लेकिन भगवान की पूर्णता में और हमारी पूर्णता में अंतर है, क्योंकि भगवान परब्रह्म है और हम सिर्फ ब्रह्म है, परब्रह्म में और ब्रह्म में अंतर है, ब्रह्म एक ही है, सत्य एक ही है, पर भगवान परम सत्य है और हम उस सत्य के सनातन अंश हैं, अंश ही रहेंगे। वो हमने सबसे पहले श्लोक में चर्चा की थी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वो श्लोक में हमने चर्चा की थी कि आत्मा की पूर्णता है कि जब वो पूर्ण की सेवा में पूरी तरह से लग जाता है। जैसे एक मशीन है, जैसे ये मशीन में आप देखिए एक स्क्रू है, ये स्क्रू की पूर्णता क्या है? एक हीला है। एक हीले की पूर्णता क्या है? एक हीला है, ये मशीन का अंश है। ये सारा मशीन है, ये पूर्ण है, और एक हीला है, ये अंश है। तो अंश की पूर्णता किसमें है? जब ये अपने सही स्थिति में है, सही स्थान में है, सही चीज के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसकी पूर्णता उसमें है। सही बात है ना? उसी तरह से जीव का सही स्थान क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि भगवान का नित्य दास, सिर्फ दास नहीं, नित्य दास, हमेशा का दास है। तो दासत्व का मतलब क्या है? सेवा। तो जब जीव भगवान की सेवा में लग जाता है, वो जीव की पूर्णता है। और ऐसे जब वो सेवा करता है तो भगवान की पूर्णता को भी समझ पाता है। जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करता, तब तक भगवान की पूर्णता और ये सृष्टि की पूर्णता और अपने आप की पूर्णता को समझ नहीं पाता है। जब वो पूर्ण की सेवा करता है तो सारी चीजों की पूर्णता समझ लेता है। ये सुंदर चीज है भक्ति की। ईश्वर है परमा कृष्ण, भगवान ने, भगवान को किसने बनाया? ये सवाल है आपका। भगवान ने सब कुछ बनाया, पर भगवान को किसने बनाया? भगवान की परिभाषा ऐसे बताई गई है, जन्मादि अस्य यतः, सब कुछ उन्हीं से आता है और वो हमेशा के लिए रहते हैं। अनादिर आदिर गोविंद, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान जो है वो सर्व कारणों के कारण है। ये दुनिया में हम देखते हैं कि हर चीज का कारण होता है, पर भगवान का कोई कारण नहीं होता है। ये परिभाषा है भगवान की, अनादिर आदिर गोविंद। वो सबके पहले आए हैं आदिर, और उनके पहले उनका कोई ओरिजिन, उनका कोई स्रोत नहीं है, पर वो दूसरे चीजों के स्रोत है। अनादिर आदिर अंत भी नहीं, ना तो उनका शुरुआत है ना तो उनका अंत हो सकता है। ये है भगवान। क्या नहीं मानते? आप मानते हैं कि सृष्टि खुद ब खुद आ गई है? ये तो भगवद गीता में तो ऐसा नहीं बताया गया है। भगवान का मतलब है, भगवान का मतलब है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वो परम भोक्ता है। परम भोक्ता की बात क्या है? वो एकमात्र वास्तविक भोक्ता है और वो सृष्टिकर्ता भी है। ठीक है, मेरे ख्याल से समय हो गया है। आखिरी प्रश्न है, इजाजत है तो आखिरी प्रश्न।
अभी जो हमारी हालत है, हम तो उत्तम भागवत को बोल नहीं सकते, हम उत्तम भागवत है। हम किसी भी आदमी के सामने आते हैं तो उनके गुण दोष हमको मालूम होते हैं। हम किसी भी आदमी के सामने आते हैं तो उनके गुण दोष हमारे सामने आ जाते हैं, बहुत स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। और हम ऐसे भी मानते हैं हमारे अभी के जीवन से ये वो जरूरी भी है कि आदमी कैसा है, कैसा उसको किस तरह से व्यवहार करना है, ये अच्छा है बुरा है, कैसा हमारे साथ बर्ताव रहेगा, ये बहुत स्वाभाविक रूप से होता है। तो उसमें जो परमात्मा का देखना, आत्मा और परमात्मा का देखना, वो हाउस से कर सकते राजा से ज्यादा, वो जबरदस्ती हटा के खुश हो जानेंगे तो क्या गुंडो जानना भी जरूरी है और गुंडो जाके उसके साथ व्यवहार भी करना जरूरी है और भगवत भगवान भी है, आत्मा भी है, भगवान का स्वरूप भी है, वो भी जानना जरूरी है। किस तरह से कैसे करना वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी समझ उससे क्या है?
आपका सवाल है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, कि हम दूसरे व्यक्तियों में दोष देखते हैं, कमियां देखते हैं और अच्छे गुण भी देखते हैं, दोष देखते हैं, और ये सब देखते हुए हम उनके प्रति किस तरह से व्यवहार करें और कैसे हम आत्मा को देखें और उनके अंदर परमात्मा को देखें, यही है ना आपका प्रश्न?
और गुण दोष देखना हमें स्वाभाविक लगता है और जरूरी भी लगता है व्यवहार करने के लिए, इस संसार में नहीं देखेंगे तो हम खुद हो जाएंगे, वो हमको बना देगा, हमको ठगा देगा, हमको अच्छे तरीके से तो क्या ठीक है।
देखिए, जहाँ तक प्रैक्टिकल व्यवहार का प्रश्न है, आपको जो जरूरी है वो करना चाहिए। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको जरूर देखना है कि कोई आपको ठगने आ रहा है, तो आपको होशियार रहना है, उस दृष्टि से आपको व्यवहार करना चाहिए। पर यह दृष्टि होनी चाहिए जो कि महाभागवत की दृष्टि है जो हमने बताई थी, ये दृष्टि को हम आर्टिफिशियली इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। महाभागवत की दृष्टि है कि ठीक है, ये जो भी गुण है ये शरीर से संबंधित है, वास्तव में ये व्यक्ति तो शरीर नहीं है, ये आत्मा है और ये शरीर के अंदर भी परमात्मा है, आत्मा परमात्मा दोनों है, और ये गुण है, कोई अच्छे गुण है कोई बुरे गुण है, ये अपने अपने कर्म के अनुसार अच्छे गुण है बुरे गुण है, एक एक तरह का शरीर है, दूसरे प्रकार का शरीर है। तो महाभागवत जो है इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपने अपने गुण अपने अपने कर्मों को ध्यान न देते हुए वो दोनों का उद्धार करना चाहते हैं, अच्छे आदमी का बुरे आदमी का। जहां तक हमारा सवाल है, हमें भेदभाव करना चाहिए क्योंकि हम वो स्तर पर नहीं है। जैसे हमने पहले बताया कि मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो चार श्रेणियों में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करते हैं। भगवान के प्रति एक तरह का व्यवहार करते हैं, भगवान के भक्तों के प्रति एक तरह का व्यवहार करते हैं, जो अभक्त हैं पर जो ईर्ष्यालु नहीं है उनसे एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो नास्तिक है उनसे अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार अलग अलग हमें करना चाहिए, पर दूसरों के दोष जब हम देखते हैं तो हमें अपने आप के अंदर भी दोष देखने चाहिए कि मैं इनके अंदर दोष देख रहा हूं पर शायद मेरे अंदर इससे 100 गुने ज्यादा दोष मेरे अंदर हैं। और अगर हमें अच्छे गुण मिले, देखना चाहिए कि मैं इतना गिरा हूं कि मैं इसके अंदर सिर्फ एक अच्छा गुण देख रहा हूं, वास्तव में इसके अंदर कितने और अच्छे गुण हैं। यह है भक्त की भावना, ये भावना से हमें हमारा काम चलाना चाहिए। पर जहां तक प्रैक्टिकल डीलिंग्स का सवाल है, हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए, जैसे जरूरी है वैसे व्यवहार करना है, नहीं तो इस दुनिया में हम ठगे जाएंगे। नहीं, फिर भी हमें कोशिश तो करना चाहिए कि दूसरों के भूल न ढूंढें, दूसरों के दोष न ढूंढें, दूसरों की निंदा न करें, ये तो जरूर हमें अभी भी कोशिश करना चाहिए। खुद ब खुद जब महाभागवत के स्तर में जीव आ जाता है, व्यक्ति आ जाता है, तो खुद ब खुद ही आ जाता है और ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा जी, हरे कृष्णा।